الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چن کے ناظرین پروگرام دار الہدیٰ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرما جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذہن نصیب اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکلات بھی حل کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیر رضا تاری ہیں ان کو بھی خوش آمدید
جزاک اللہ خیر
کیسے مزاجی ہیں
الحمدللہ علی کل حال آپ کیسے ہیں
ماشاءاللہ شکر ہے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک ویڈیو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں
میں ابھی بات کر رہا ہوں باو مارکیٹ سے نا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے بزنس کے اندر ہم کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو اس کا اندر شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے اور دوسری بات کہ اس کے اندر کسی محنت میری ہے پیسہ اس کا ہے تو اس میں ہم دونوں کا لاس ہوگا ہوگا یا ون سائیڈڈ لاس ہوگا خالی جیسے میرا یا اس کا جو اس کا صحیح طریقہ اور شرعی طریقہ ہے برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیجیے
ٹھیک ہے کسی کو انہوں نے پارٹنر بنانا ہے اب دو طرح کی صورتیں یا تو دکان میں ہی کھڑے ہیں تو اس کا مطلب کاروبار چل رہا ہوگا
جی
تو اب یہ کاروبار چل بھی رہا ہے اس دوران کسی کو شریک کرنا ہے تو کیا ہے لیکن اگر شروع سے ہی ایک جو طریقہ کار ہے تو میں چاہوں گا دونوں اعتبار سے آپ کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹنرشپ کی دو صورتیں ہوتی ایک یہ کہ دونوں افراد کا پیسہ لگا ہوا ہو اور ایک یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی ورکنگ ہوگی کام دوسرا کرے گا اور پیسہ صرف ایک کا ہوگا جس میں دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ مشارکہ یا شرکت جو ہے وہ کہلاتی ہے اور جس میں ایک شخص کا پیسہ ہو اور ایک شخص جو ہے وہ کام کرے یہ جو ہے وہ مداربت کہلاتی ہے یا مداربہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں دونوں کے اپنے جو ہے وہ اصول و ضوابط ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے اور اس کے آگے نقصان اور دیگر تمام چیزوں کے احکامات ہوتے ہیں مگر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پارٹنرشپ جب بھی آپ کریں گے تو وہ نئے کام کے اندر ہوگی کیونکہ پارٹنرشپ کے لیے کیش ہونا جو ہے وہ ضروری ہے
کیش
آپ کیش سے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں سامان کے ساتھ پارٹنرشپ آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے رننگ بزنس ہے تو اب اس کے اندر آپ اگر کسی کو پارٹنر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس طرح نارمل جو ہے وہ پارٹنر اسے نہیں بنا سکتے چلتے ہوئے کام میں کسی کو شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں نیا کام ہے آپ کے پاس کسی کام کی ایکسپرٹیز ہیں اور سامنے والا شخص جو ہے وہ ایز اے انویسٹر جو ہے وہ پیسہ لگانا چاہتا ہے تو یہ شرکت کی صورت جو ہے وہ مداربت کہلاتی ہے اس صورت کے اندر جو ہمارے سائل محترم کا سوال تھا کہ جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا تو دیکھیں نقصان جب بھی ہوگا اس کے اندر تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ نقصان کو پروفٹ سے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا نقصان کس طرح ہوگا ورکنگ پارٹنر کا یہ نقصان ہوگا کہ اس کو نفع ملے گا ہی نہیں جب بچا ہی نہیں مال کوئی نفع ہی نہیں ہوا تو لہٰذا اس کو نفع نہیں ملے گا اس کی گویا کہ محنت کا اسے نقصان حاصل ہوا کہ اس کو محنت کے بدلے میں کچھ نہیں ملا
صحیح
انویسٹر کا یہ جو ہے وہ نقصان ہوا کہ اس کو اپنے پیسے کے اوپر مزید جو ہے وہ پیسہ پروفٹ کی صورت میں نہیں ملا تو اب مثال کے طور پہ دو افراد نے پارٹنرشپ جو ہے وہ کی یہ والی کہ ایک ورکنگ پارٹنر تھا ایک انویسٹر تھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ کیش دے گا سامنے والے کو کہ بھئی یہ کیش لیں اور فلاں کام آپ کریں
ٹھیک
اس میں اگر وہ کوئی شرائط و ضوابط لگانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ آپ نے کیش پہ کرنا ہے ادھار پہ نہیں کرنا تو اس طرح کی کوئی جائز شرط بھی وہ اس کے اوپر لگا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پوری دکان بنا دوں اور اس کو دوں کہ اب یہ دکان چلاؤ ये जो है वो पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी, आपको कैश उसके हैंड ओवर करना होगा। अब दुकान जो है वो किराए पे लेनी है, उसका एडवांस देना है, और जो है वो पूरा जो भी कारोबार का सेटअप बिठाना है वो सब उसकी जो है वो जिम्मेदारी होगी। उसमें आप मशवरा दे सकते हैं या इब्तिदान जो चीज़ें आपने उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, जायज टर्म्स एंड कंडीशन के तहत तय कर ली, उसकी पासदारी उसके ऊपर लाजिम है, लेकिन बहरहाल उस काम को सेटअप करने के अंदर वो बाइख्तियार होगा। अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज तय करना ज़रूरी होगा, ये हर पार्टनरशिप के अंदर ही ज़रूरी होता है, चाहे वो मुशारका वाली हो या मुदारबा हो, कि किसका कितना नफ़ा होगा। हाँ, ये जो परसेंटेज, ये जो नफ़ा तय होगा ये फ़ीसद में तय होगा, परसेंटेज में तय होगा। ये इस तरह तय नहीं हो सकता कि जनाब जो है वो मैं 5,000 रुपये हर महीने के जो है वो लूँगा, या पर डे के मैं 500 रुपये लूँगा, तो यूँ नफ़ा तय नहीं किया जा सकता। परसेंटेज के अंदर नफ़ा जो है वो तय किया जाएगा कि भाई इतने परसेंट तुम्हारा, इतने परसेंट मेरा।
इसमें तो फिक्स नहीं करना होगा कि अभी 50-50 ही होगा या
नहीं, आपस में बाहमी रिजामंदी से इसे अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं, 50-50 करें, 40-60 करें, 30-70 करें, कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। हाँ, नुकसान की क्या सूरत होगी? नुकसान अव्वलन तो प्रॉफिट से पूरा किया जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इतना नुकसान हो गया कि वो प्रॉफिट से कवर नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा नुकसान अगर वर्किंग पार्टनर की गफलत की वजह से, उसकी कोताही की वजह से नहीं हुआ, वो नुकसान सारा का सारा इन्वेस्टर को अकेले बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो वर्किंग पार्टनर पर नहीं डाला जाएगा। तो लिहाजा मुतलकन ये कहना कि जनाब जो है वो सारा नुकसान ही वो उठाएगा, मैं तो हर महीने अपना प्रॉफिट ले लूंगा, नहीं, जब नुकसान हुआ है तो फिर वर्किंग पार्टनर का प्रॉफिट भी उसे नहीं मिलेगा। जब नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि प्रॉफिट से वो नुकसान पूरा ही नहीं हो रहा, अब असल कैपिटल में नुकसान हो रहा है, तो वो कैपिटल का जो नुकसान है वो बहरहाल अकेला उसको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को, वो वर्किंग पार्टनर के ऊपर नहीं डाला जा सकता। बाज़ लोग ये तय कर लेते हैं कि भाई ठीक है नहीं डाला जा सकता, लेकिन हम तय कर रहे हैं कि हम भी ये नुकसान बर्दाश्त करेंगे, तो ये शर्त लगाना भी जायज नहीं है, ना ये शर्त लगा सकते हैं, ना ही इस शर्त की बुनियाद पर आप वर्किंग पार्टनर पर नुकसान डाल सकते हैं।
अच्छा, इसमें कुछ और भी, जैसे यानी पहले भी प्रॉफिट अच्छा खासा लेते रहे, सही है, यानी अब पिछले महीने हुआ प्रॉफिट हुआ तो अब वो इन्होंने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, अब अगले महीने बिल्कुल असल कैपिटल में ही मसला हो गया है, तो अब इसका भी कुछ है?
जी, असल में इसमें ये है कि आपकी ये जो पार्टनरशिप का जो ये एग्रीमेंट है या ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये महीने पर नहीं है, ये पूरी पार्टनरशिप के ऊपर है। जब तक आपकी ये पार्टनरशिप इस तरह चल रही है कि आपने इन्वेस्टर को उसके पैसे वापस नहीं कर दिए, तो लिहाजा मिसाल के तौर पर पहले साल जो है वो इस पार्टनरशिप ने आपकी जो भी आपकी दोनों ने मिलकर उस कारोबार का आगाज किया, 1,00,000 रुपए नफा कमाया, जिसमें से तय यह था कि भी 50-50 लेंगे, दोनों ने 50-50 ले लिया। अब अगले साल जो है वो नुकसान हो गया 1,00,000 रुपए का, तो अब ये नहीं होगा कि जनाब जो है ये 1,00,000 रुपए का नुकसान जो है वो इन्वेस्टर बर्दाश्त करेगा, नहीं, बल्कि होगा ये कि उस साल का जो नफा है वो तो मारा गया, नुकसान कैपिटल में हो गया, तो अब जो पिछले साल दोनों ने 50-50,000 रुपए लिए थे वो रिटर्न करेंगे, वो रिटर्न करके कैपिटल को जो है वो पूरा करेंगे। हाँ, नुकसान हो गया 1,50,000 रुपए का, नफा लिया था 1,00,000 रुपए, तो अब ऐसी सूरत में दोनों ने 50-50 जो है वो वापिस किए, अब जो मजीद 50,000 का जो है वो नुकसान है वो बहरहाल सिर्फ इन्वेस्टर बर्दाश्त करेगा, वो वर्किंग पार्टनर पर नहीं डाला जाएगा।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना कितनी यानी तफसील और डिटेल के साथ ये मसला बयान हुआ है। बहरहाल लोग इसमें कई एतबार से गलतियां करते हैं, और आम तौर पर जो गलतियां करने के बाद वो या तो नुकसान होता है तो आते हैं, ये बातें पहले तय नहीं होती तो फिर वो झगड़ा भी होता है, जैसे कई केस आते हैं कि तो भाई उस वक्त तो ये बात नहीं हुई थी, या उस वक्त गलत ही बात हुई थी, जो गैर शर्त
गलत हुई थी, नफे पर ही सिर्फ जो है वो बात हुई थी, नुकसान पर बात नहीं होती। अच्छा, कई जगहों पर होता ये है कि ये जो हमने तो पार्टनरशिप को इस खूबसूरत हाल बयान की, अमूमन चलते हुए कारोबार में ये होता है कि कोई भी शख्स जो है वो पैसा दे देता है या ये दुकानदार ले लेता है। अब कोई बूढ़ी अम्मा है, कोई बेवा है, या कोई और जो है वो ज़यीफ़ आदमी है, रिटायर्ड हुआ है, वो किसी भी चलते हुए कारोबार वाले को पैसा दे देता है कि यार मुझे इसके ऊपर तुम इतना दे दो कि मेरा गुजर बसर महीने का हो जाए। दर हकीकत ये पार्टनरशिप नहीं होती, उमूमी तौर पर ये जो देने वाले दे रहे होते हैं वो बतौर कर्ज ही दे रहे होते हैं। बतौर कर्ज होने की दलील ये है, कि वो उसमें नुकसान के हामी नहीं होते कि हमारी रकम जाया नहीं होनी चाहिए, वो अपनी रकम को सेफ समझते हैं कि जनाब हमारी रकम अपनी जगह पर खड़ी रहेगी।
ऐसा ही
आप प्रॉफिट में चले, आप अप एंड डाउन करके नुकसान कर लीजिएगा कि किसी महीने 3 दे दीजिएगा तो किसी महीने आप 4 दे दीजिएगा, किसी महीने 2 दे दीजिएगा, लेकिन वो अपनी असल रकम को महफूज समझते हैं। जब असल रकम कोई इस बुनियाद पर आपको देता है कि जनाब मेरी असल रकम महफूज रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको वो रकम बतौर कर्ज दे रहा है, और कर्ज के ऊपर जो भी नफा तय किया जाएगा वो चाहे आप फिक्स तय करें चाहे जो है वो फिक्स किए बगैर तय करें, जब नफा तय है तो वो सूद है कि हदीस पाक में फरमाया हर वो कर्ज जो के नफा खींच कर लाए वो सूद है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि पार्टनरशिप अलग चीज है, जो लोग इस तरह अमूमन दे रहे होते हैं ये कर्ज पे नफा की सूरत बन रही होती है जो कि सूदी सूरत होती है।
जी मजीद सवाल।
मेरा सवाल ये है कि एक वक्त में दो जगह बैत हो सकती है?
बैत एक ही जगह पर जो है वो होती है, हाँ तालिब जो है वो आप एक से जायद जगह के ऊपर हो सकते हैं,
तालिब हो सकते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों में?
यानी बैत असल तो यही है कि अपने पीर साहब के ही जो है वो आप मुरीद होते हैं, दूसरे से जो है वो तालिब होते हैं, तो यूं उनका फैज भी जो है वो उस शख्स को मिलना शुरू हो
जाए। दो पीर का मुरीद होने का मतलब तो यही होगा फिर दो कश्तियों में,
दो कश्तियों के अंदर जो है वो सवार शख्स से उसे जो है वो ताबीर किया गया, तो लिहाजा इंसान को एक ही का मुरीद होना चाहिए, बल्कि फरमाया कि तालिब होने के बाद भी अगर उसे कोई फैज मिलता है तो उसे अपने ही पीर का फैज जाने
के वहीं से ही है,
वहीं से ये है। तो ये चूंकि बैत ये सब चीजें दर हकीकत अकीदत और इरादत के ऊपर ही,
सही
अकीदत और इरादत खत्म तो बैत भी जो है वो खत्म, तो लिहाजा अकीदत और इरादत को कायम रखें और किसी एक ही जामे शराइत पीर से बैत हुई।
असल यही है कि वो पीर जामे शराइत हो, यानी शरीयत की जो पीर के अंदर शराइत पाई जाना जरूरी है कि उसके बगैर तो वो पीर पीर ही नहीं होगा, तो वो होना जरूरी है कि जिनसे भी आप बैत कर रहे हैं वो आलिम दीन हो और इल्म बकायदा ये भी इनकी शराइत में, एक तो मुसलमान सही वकी सुन्नी सही वकीदा और फासिक मौलिन ना हो, एलानिया उसका फिस्क ये चीज़ें ना हो, फिर आलिम हो और उसके साथ फिर आगे जो उसका जो सिलसिला है ये तरीकत वाला जो सिलसिला है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो, तो ये जब चीज़ें पूरी हैं तो ठीक है वो पीर जामे शरायते हैं और उनसे बैत हो सकते हैं, और अगर इनमें ही कोई कमी है तो आप पहले उनके मुरीद हुए ही नहीं, तो इसलिए अगर किसी के यहाँ बिलफर्ज कोई कहीं बैत है कुछ भी है तो उनको इन चीज़ों को ज़रूर बहरहाल देखना चाहिए। बाज़ुकात आदमी पीरी मुरीदी ये भी एक टॉपिक है और हम लेंगे इंशाल्लाह आगे, रबी आखिर का महीना भी है तो आएगा तो उसमें हम इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगु भी करेंगे। पीर का लगता है कोई काम लोगों ने ये समझ लिया कि वो हम जहाँ मुरीद हैं तो बस हमारा कारोबार चलता रहे, हमें ये कुछ ना हो, अच्छा इसमें हमें परेशानी ना हो, ये कोई बीच में बीमारी भी ना आए, कुछ ये भी ना आए, तो क्या पीर के यही काम है कि वो लोगों के ये चीज़ें सेट करता रहे? यानी बात अगर ये अब मामलात में कोई कमी आई है तो वो पीर के बारे में सोचने लग जाएंगे हालांकि वो जामे शरायत हो, तो क्या ये
असल? तो देखिए पीर रुश्दो हिदायत के लिए होता है कि इंसान जो है वो उस पीर के ज़रिए से जो है वो अपने दीनी उमूर आखरत के उमूर जो है वो बेहतर करने की जो है वो कोशिश करता है, जो कुछ इंसान राह रास्त से जो है वो हट जाता है तो यूँ पीर की जो है वो नज़र से वो राह रास्त पर जो है वो आ जाता है, और जबकि उसके फरामीन के ऊपर भी जो है वो अमल भी करे, तो मगर वही है कि फ़ी ज़माना इसको लोगों ने जो समझा हुआ है आम तौर पर वो इसी बात से कि भाई माली एतबार से हमें फ़वाद हों और हम जो है वो दुनियावी परेशानियों से जो है वो
बचे रहें,
पाक साफ जो है वो रहें बचे रहें, तो ये एक ज़िमनी फ़ायदा है जो कि इंसान को जो है वो हासिल होता है और हर एक को हासिल हो ज़रूरी नहीं, बाज लोगों के बहरहाल तकदीर का लिखा हुआ सबकत करता है तो उसे जो है वो कोई पीर भी जो है वो नहीं जो है वो टाल सकता, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह तबारक व ताला के औलिया हैं जो उनकी दुआओं से वो बदल भी जो है वो जाती हैं, तो लिहाजा इसके अंदर जहन असल यही होना चाहिए कि पीर के ज़रिए से अपना दीन और आखरत के उमूर को जो है वो सीधा करना है, ज़िमनी तौर पे ये फ़वाद हों तो वो जुदा बात है लेकिन फ़कत इस गर्ज़ से जो है वो मुरीद नहीं होना चाहिए।
यानी आप دو طرح کی چیزیں ہوگی کہ اگر یہ اغراض کہیں ایسی جگہ سے آدمی کو بظاہر لگ رہا ہے کہ اچھی پوری ہو رہی ہیں
جی.
اور پیر جامع شرائط نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بزنس صحیح چل رہا تو یہ تو آپ نے پیر اپنے پیر
جو علم ہے جو ہے وہ
وہاں اس کو ختم کرنا ہوگا.
بالکل
ہے ہی ختم.
علم مسمریزم ہے جو یہ جادو کا علم ہے تو اور اس طرح کے جو ہے وہ شعبدہ بازی ہے تو ایسے کئی لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں اور یہ ایون حتیٰ کہ مسلمان نہیں غیر مسلموں کے اندر ایسے جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ ہیں
وہ یہ کام کرتے
ہیں. اور
ہے نا کہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی کوئی ایسی چیز کی شادی ہو تو اس کو بھی اس میں ڈالا ہی ہے.
تو لہٰذا اس بنیاد پر کہ جناب اس سے جو ہے وہ مجھے فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو آپ اسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رہنما یا اپنا لیڈر تھوڑی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جب اپنا کوئی اعتقاد, چونکہ یہ بات ہم نے کی کہ اعتقاد کی بات ہے, عقیدت اور ارادت کی بات ہے, تو یہ جو روحانی اعتبار سے ایک جو ہے وہ ہم ایک لگاؤ لگاتے ہیں وہ اسی سے لگائیں گے کہ جو روحانی پیشوا بننے کے قابل ہو. جو اس کے قابل ہی نہیں ہے, خود ہی جو ہے وہ دین اسلام کے احکامات کی برسر اعلان جو ہے وہ روگردانی جو ہے وہ ان احکامات سے جو ہے وہ کرتا ہے, یا اس کے عقائد ہی جو ہے وہ درست نہیں ہیں, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس سے کتنی ہی چیزیں ظاہر ہوں وہ بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس سے اپنا روحانی رشتہ جو ہے وہ ہرگز جوڑ نہیں
سکتا. اور جہاں اچھا روحانی رشتہ جوڑا ہوا ہے وہاں بظاہر یہ والی پریشانیاں ہیں, تو اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شاید اپنے آپ کو وسوسوں میں پالیں کہ یہاں میرا یہ کام نہیں ہو رہا. تو آپ اگر ماشاءاللہ جامع شرائط پیر کے مرید ہیں اور پھر بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسے مسائل ہیں, تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا صحابہ کرام کو ایسی تکالیف نہیں پہنچی؟ وہ مختلف پریشانیوں میں, آزمائشوں میں تو ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے, اور پیری مریدی کا اصل مقصد وہ ہمیں ضرور بہرحال سمجھنا چاہیے. بڑھتے مزید سوال.
میرا ایک سوال ہے کہ دو سیدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی والعافنی وارزقنی پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ
دو سجدوں کے درمیان.
جی, دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ ہے, تو جلسے کے اندر اللہم اغفر لی پڑھنا مستحب ہے, تو یہ پڑھ سکتے ہیں.
اتنا ہی پڑھنا چاہیے؟
جی اتنا ہی پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. مزید کوئی ویڈیو سوال؟
سمیر بابر مارکیٹ لانی ٹاؤن سے. میرا سوال یہ ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, مکان جو ہے والدہ کے نام پہ, تو اس کی جو وائف ہے ان کو کچھ حصہ ملے گا اس میں سے یا نہیں ملے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے.
جی ماشاء اللہ, یہ ہم آج ہمارے کیمرہ مین لگتا ہے بابر مارکیٹ ہی گئے ہوئے نا, کپڑوں والی دکانوں پر ہی.
جی
بہرحال مسائل تو چاہے آپ کپڑے کے کام کرتے ہیں یا کچھ بھی, سوالات لوگوں کے پاس ہوتے ہی ہیں اس طرح کے. آپ وراثت کا مسئلہ پوچھا, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں اس میں دو اعتبار سے چیز سامنے آ رہی ہے. ایک یہ کہ مکان تھا شوہر کا لیکن اس نے جو ہے وہ احتراماً جو ہے وہ والدہ کے نام جو ہے وہ کروایا ہوا تھا, تو اس اعتبار سے ان کا یہ سوال ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, مکان تو جو ہے وہ شوہر کے والد کا تھا اور والد کا انتقال ہو گیا تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ والدہ کے نام جو ہے وہ کروا لیا گیا. بہر صورت چونکہ نام کروانا یہ ایک گفٹ کرنا ہے کسی کے لیے, تو جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں جیسے مکان یا کوئی ایسی چیز گفٹ کر رہے ہیں تو اس میں شرعی اعتبار سے قبضہ ضروری ہے. میں کوئی چیز, کوئی مکان اگر کسی کو جو ہے وہ دے رہا ہوں تو اس سے اپنا سارا تصرف جو ہے وہ میں ہٹاؤں گا, اور اپنے تصرفات ہٹا کر میں وہ چیز خالی کر کے سامنے والے کو ہینڈ اوور کروں, پہلی چیز. دوسرا یہ کہ میں خود اس کے اندر رہائش پذیر نہ ہوں, کیونکہ اگر میں رہائش پذیر ہوں تو پھر میرا جو ہے وہ تصرف اور قبضہ ہے سامنے والے کا جو ہے وہ نہیں ہوگا.
صحیح.
تو لہٰذا عموماً جو ہمارے ہاں نام ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن میں تو ہو جاتا ہے, لیکن اس مکان میں جو شخص, جس شخص نے نام کیا ہوتا ہے وہ بھی رہ رہا ہوتا ہے, سامنے والا بھی رہ رہا ہوتا ہے. شوہر بیوی کا نام کر دیتا ہے اور بیوی شوہر دونوں ہی جو ہے وہ اسی گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ بیٹے نے والدہ کے نام کر دیا لیکن والدہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندگی گزار رہی تھی, یا والدہ جو ہے وہ اس گھر کے اندر آئی ہی نہیں, بیٹے ہی اکیلا زندگی گزار رہا تھا, صرف پیپر میں نام تھا. تو ان صورتوں میں در حقیقت وہ شرعی قبضہ نہیں ہوا. جب شرعی قبضہ نہ ہو اور گفٹ دینے والا یا جس کو گفٹ دیا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو وہ گفٹ کینسل ہو جاتا ہے, जब गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा तो वो जिसका असल था उसी की तरफ लौट जाएगा और फिर उसके एतबार से उसमें विरासत तकसीम होगी। तो जो हमारे साहिले मोहतरम ने सवाल किया, इसमें भी अगर वाकई शरई कब्जा नहीं पाया गया था तो वालदा की तरफ मिल्कियत मुंतकिल नहीं होगी। जब वालदा की तरफ मिल्कियत मुंतकिल नहीं होगी और मकान की मिल्कियत अगर बेटे की थी और वो बेटी की तरफ लौट गई तो उसके अंदर उसकी बेवा का भी हिस्सा होगा। हाँ, वालदा हयात है तो उनका भी हिस्सा होगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन बतौर माँ जो है वो छठा हिस्सा जो है वो उनका भी होगा। और जो है वो जो बेवा है तो अगर औलाद है तो जो है वो उसका आठवां हिस्सा होगा, औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा यानी 25% उसका होगा। अब ये जो पूरी तफसील बयान की, किसी केस के अंदर जब हमें इसके ऊपर फतवा लेने की या देने की हाजत होती है तो फिर फरीकैन को बुलाना पड़ता है, फिर वालदा को भी बुलाया जाएगा, फिर जो है वो बेवा को भी जो है वो बुलाया जाएगा। इनका बयान सुनने के बाद, ये सारे सवालात करने के बाद कि क्या कभी आपको बिल्कुल खाली करके यूं आपके हैंडओवर वो चीज़ की गई
नहीं
की गई, आप कभी खाली जब मकान था उस वक्त इस मकान में कभी गई
बतौर कब्जा के यानी अकेले,
तो ये तमाम तफसील जानने के बाद फिर फतवा दिया जाता है कि जनाब ये मकान अब किसकी मिल्कियत है, और फिर जिसकी मिल्कियत करार पाता है फिर विरासत उसके एतबार से आगे तकसीम होती है।
99% जो दारुल इफ्ता में मसले इतना कहते हैं, क्या नतीजा निकलता है?
यही कि वो चीज जो है वो
कब्जा
के नाम पर जो है वो होती है, दर हकीकत वो उसकी नहीं होती बल्कि वो दर हकीकत उसी की होती है शरई एतबार से जिसने
नाम
की होती है, नाम पे की होती है,
यानी आमतौर पर शोहर बीवी के नाम लेता रहता है,
शोहर के नाम पर ही होती।
ये कितना बड़ा मसला है, और बाद वाकई ही जेन्युइन तरीके से ये मिल्कियत देना चाह रहे होते हैं, ये फुला बेटे ने इतनी मेहनत की थी वालिद के साथ, अब वालिद चाहता कि सबको दे रहा हूँ तो इसको उसने कुछ दिया
जी,
या हम इस बहस में अभी नहीं जा रहे कि उसको जिंदगी में तकसीम करनी है तो किस तरह करनी है। कुछ ना कुछ दे दिया लेकिन हैंडओवर नहीं किया। अच्छा, जेवरात भी बाज का, एक तो ये गैर मनकूली चीजें, इनके कब्जों के तकाजे अलहदा हैं, फिर जेवरात के तौर पर
अब वो यही
के चार रखे हुए
वही रखे हुए और सिर्फ कह दिया कि भाई फुला बाली उसकी है, फुला सेट जो है वो उसका है, लेकिन उसको जो है वो सेट जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर उसके हैंडओवर नहीं किया। हालांकि उसमें जरूरी नहीं कि, कई दफा ये कह रहे होते हैं कि भाई वो हिफाजत की गर्ज से रखा हुआ था, आप उसके हैंडओवर कर दें, उसके हाथ में दे दें, वो
आपके
हाथ में ले ले, फिर आपके पास वो बतौर अमानत जो है वो रखवा दे। तो इस तरह के कई मसाइल के अंदर अगर हम देखें तो कई दफा फर्क पड़ जाता है वरासा के एतबार से, जैसे वालिद की वो चीज थी और वालदा के नाम पर थी, शरई कब्जा नहीं हुआ, अब वालिद और वालदा दोनों का इंतकाल हो गया, लेकिन दोनों के इंतकाल के दरमियान बीच में किसी औलाद का इंतकाल हो गया, तो अगर आप उस चीज को वालिद की करार देंगे तो उस औलाद को हिस्सा मिलेगा और आगे उसके वरासा को हिस्सा मिलेगा, और अगर वाकई वो चीज वालदा की है तो फिर वालदा से पहले जिन औलादों का इंतकाल हो गया उनका हिस्सा नहीं होगा। तो कई दफा वरासा हकदार बन रहे होते हैं लेकिन वो महरूम हो जाते हैं, और कई दफा वो हकदार नहीं बन रहे होते लेकिन उन्हें जो है वो देने वाली बात जो है वो आ जाती है। तो लिहाजा इन बातों के अंदर एहतियात जरूरी, और फिर चूंकि कानून इस मामले में जुदा है कि वो तो देखता है कि भाई किसके नाम पर,
किसका नाम पे,
तो ऐसे वक्त के अंदर बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो खौफ खुदा रखने वाले हों और वो कानून से कते नजर ये जानना चाहते हों कि शरई एतबार से इसमें हुक्म क्या है, वरना दर हकीकत लोग उस वक्त फिर अक्सर यही कहते हुए सुनते हैं कि नहीं भाई कानूनी एतबार से तो देखें ये हमारे नाम है तो लिहाजा हम तो अब जो है वो इसमें से हिस्सा
नहीं देंगे,
या आप हमारे एतबार से बना दें फतवा कि जनाब हमारे एतबार से इनका हिस्सा बनता है या नहीं बनता, तो उनके एतबार से वाकई उस शख्स का हिस्सा नहीं बन रहा होता लेकिन दर हकीकत वो उसका होता ही नहीं है।
तो जिंदगी में कोई किसी को चीज देना चाहे तो मैं तो जरूर कहूंगा कि इसके हवाले से उसके जो शरिया काम है हसबे हाल, जब हम कहते हैं ना कि जब आदमी को जरूरत है उस वक्त वो मसला सीख ले, यानी पूरा का पूरा इल्म हर हर आदमी मर्द औरत तमाम वो आवाम के लिए वो यूं फरीजा नहीं है कि फर्ज के हर इल्म उसके पास हो, ऐसा नहीं, लेकिन जो काम करने जा रहे हैं बाद जैसे जरूरी काम जाहिर है कि जिनके पहले से ही हमें अहकाम सीखने हैं, अकायद का इल्म है, उसके बाद हमारे फराइज हैं, फराइज चीजों का इल्म है, ये अपने एतबार से चलता रहे, लेकिन अब कोई जायदाद किसी को दे रहा है तो जाहिर है ये काम कर रहे हैं, अपना हक खत्म करने के लिए कर रहा है, किसी और को मिल्कियत और हक देना चाह रहा है, तो इसको चाहिए कि इसका दीनी शरी मसला हुक्म पूछ ले और फिर उसके बाद आगे कदम उठाए के फिर उस। और जो पहले से आते हैं कफील साहब, कई मरतबा ऐसा हुआ कि माशाल्लाह उनको उसका जब शरी तरीका बताया गया और वो
खुश भी होते हैं,
शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बाद में हमारे बच्चों को इस परेशानी से
बचा लिया। फिर इसके अंदर कई दफा ऐसा भी होता है कि देखें, कई दफा टैक्स की वजह से वालिद जो है वो अपने मकानात को किसी और के नाम पे रखता है, एक किसी बच्चे के नाम पे रख दिया, एक किसी बच्चे के नाम पे रख दिया। अच्छा, फिर उसमें भी जो है वो अगर हम डिटेल में जाएं कि नाबालिग के नाम किया तो उसकी जुदा सूरतें हैं कि जब बच्चे नाबालिग थे बाप ने उसके नाम पे कर दिया।
जी बिल्कुल,
तो वो बिल्कुल ही जुदा जो है वो सूरत हाल है,
जहाँ पर वालिद का ही कब्जा,
वालिद का कब्जा ही कब्जा जो है वो
भी हो जाता है,
तो वो एक अलग जो है वो सूरत हाल जो है वो बनती है। कि कई दफा ऐसा होता है कि वालिद जो है वो यानी कई अब जो आते हैं कई दफा, तो वो भाई 100 रुपए की हमने बुकिंग के अंदर वो प्लॉट जो है वो लिया था, आज वो प्लॉट जो है वो लाखों रुपए का है, उस वक्त ही वो उस बच्चे के नाम पे लिया था जो बच्चा उस वक्त नाबालिग था। तो यूं कई सूरतें होती हैं। तो बहरहाल जो अब तक हो चुका, आप अगर कर भी चुके हैं और आप अभी हयात हैं तो आप उसको भी दुरुस्त करवाएं और उसके लिए दारुल इफ्ता से शरई रहनुमाई हासिल करें। और अगर आपके वालदैन इंतकाल कर चुके हैं और वो कोई इस तरह के फैसले करके गए हैं उससे मुतालिक भी शरई रहनुमाई हासिल करें, ताकि आपके पास किसी और का माल जो है वो गलत तरीके से ना आया हुआ हो, आपके पास जो दूसरों का माल है उनको अदा करें। अगरचे माल जाता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन कल क़यामत की पकड़ को अगर हम सामने रखेंगे तो आज दुनिया के अंदर हमारे लिए देना जो है वो आसान हो जाए।
कुछ SMS भी हैं, उनकी तरफ भी हम बढ़ते हैं और वो सवालात भी। ख़वातीन का बुलंद आवाज से माइक में ना तो बयान।
औरतों की आवाज़ चूँकि नगमे वाली जो भी आवाज़ है उनकी, उसकी भी पर्दे के अहकामात हैं, गैर महरम मर्दों से छुपाने का हुक्म है। तो लिहाजा चाहे वो जो है वो नात पढ़ रही हों या जो है वो दरसो बयान के अंदर उनकी वो अंदाज हो, तो उन तमाम में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि उनकी आवाज़ गैर महरम मर्दों तक ना पहुँचे। तो इस बात का ख्याल रखना हर वक्त जो है वो ज़रूरी है, वो चाहे महफिल नात हो या घर की कोई महफिल हो या कोई भी जो है वो मौका हो, चाहे स्कूल की कोई महफिल हो या स्कूल का कोई प्रोग्राम हो, तो उन तमाम में इस बात का ख्याल रखना ख्वातीन को ज़रूरी है कि उनकी आवाज़ गैर महरम मर्दों तक ना जाए।
और इसमें बतौर ख़ास ज़्यादा शिद्दत शरी हुक्म में वो तरन्नुम की आवाज़,
तरन्नुम वाली नगमे वाली आवाज़
जिसमें नात
है या जो है वो पोयम है या जो
इस तरह के
ये नगमे हैं उस एतबार।
अच्छा, अभी दूसरा एक सवाल है हमारे एक इस्लाम भाई ने समझ किया है कि कुफ्रिया ख्यालात अगर सोच में आए तो क्या इस वजह से भी कोई हुक्म होता है?
अगर किसी को भी इस तरह के जो है वो वसवसे आते हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करें। ये एक बसा औकात बाज़ लोगों को बीमारी की कैफियत जो है वो हो जाती है। बहरहाल वसवसों की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं होता, बल्कि मुसलमान के जहन में बुरे ख्यालात जब शैतान ला रहा है, चाहे वो कुफ्रिया ला रहा है, दीनी मौज़म हस्तियों से मुतालिक ला रहा है, और मुसलमान उसे ज़बान से जो है वो कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उसे उसी बात के ऊपर जो है वो अंदर ही कुड़ रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, तो ये उसके ईमान की अलामत है। जब भी तो वो उन चीज़ों को ज़बान पे नहीं ला रहा, तो लिहाजा उससे हमारे ईमान पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि ऐसे वक्त में अपने आप अपनी तवज्जो को जो है वो किसी और तरफ जो है वो ले जाएँ, उस पर सोचते ना रहें। बाज़ लोगों को शैतान मज़ीद जो है वो कुरेदना शुरू कर देता है और वो मज़ीद वसवसों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में वसवसे के जो इलाज हैं, रूहानी इलाज हैं, उनको भी फॉलो करें। अमीर सुन्नत का रिसाला है वसवसे और उसका इलाज, उसका मुतालाह करें और बुनियादी चीज़ इस बात का ख्याल करें, कोशिश करें कि आप उसको मज़ीद बढ़ावा ना दें, उसकी तरफ तवज्जो ना दें, अपनी तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मबजूल करें।
ठीक है जी, मज़ीद कुछ वीडियोस पर।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, क्या इंसानों की तरह जिन्नात पर भी शरई अहकाम लागू होते हैं? जज़ाकल्लाह खैर।
इंसानों की तरह जिन्नात के, जी जिन्नात कहाँ से?
जिन्नात भी मुकल्लफ तो हैं
जी, हाँ,
यानी उनके ऊपर भी शरई अहकाम तो हैं। हाँ, एज इट इज सेम जो मुसलमानों पर है वही हों, ये जरूरी नहीं, उसके अंदर उनके एतबार से तब्दीलियाँ जो है वो हो सकती हैं और हैं भी कई,
और
कई अहकाम के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ हैं भी, लेकिन जो है वो मुकल्लफ हैं और उनसे जो है वो कल क़यामत के दिन पूछ गछ भी
होगी। और सूरह रहमान की जो आयत मुबारका तकरार के साथ फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो उनके जो सामने दो जिनको खिताब किया जा रहा है वो इंसान और जिन्नात हैं। अच्छा, ये तो अहकामात हैं, सब चीज़ें हैं, ये सीखना जिन्नात पे है या आवाम पे भी लोगों में?
ये अहकाम सीखना,
अरे जिन्नात की इन्होंने पूछा ना, इनके
तो ये हम पर तो बार हम पर अपने ही अहकाम सीखना जो है वो जरूरी है ना।
हाँ, जिन्नात के हवाले से जो एक मुसलमान को अकीदा रखना चाहिए,
वो अकीदा रखना चाहिए कि जनाब वो जो है वो
इन
है और जो है वो उसका वजूद जो है वो है, उस एतबार से वो अकायद जो है वो रखे हैं। बहरहाल उनके क्या अहकाम हैं उसकी टो में पड़ने की हमें हाजत
नहीं है। और कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जो लोगों से हमसे मुतालिक हैं, जैसे कि हड्डियों से हदीस पाक में फरमाया गया कि उससे इस्तिंजा ना करें, क्योंकि वो जिन्नात की खुराक उसे बयान किया गया। यानी जहाँ जहाँ जिन्नात, यानी हमें हमारे मुतालिक आ गया कि ये यहाँ पे जिन्नात का है, यहाँ शरीर जिन होते हैं तो इसलिए आप लोग ये काम ना करो, ये वो चीज़ें हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे हम वो बचते रहें। बकिया जिन्नात पर क्या क्या अहकाम आते हैं वो हमारी जिम्मेदारी,
ये हम वैसे जानते नहीं है, लेकिन ऐसे उलमा जरूर गुजरे हैं जो मुफ्ती सकलैन जो है वो कहलाते थे कि जो जिन्नो इंस दोनों को ही जो है वो फतवा या रहनुमाई देने।
और हमारे उलमा ने किताबें लिखी, उसमें जिन्नात के मौजू पे भी किताबें तो लिखी हैं, अहकाम वो बयान किए हैं। और ऐसा मुमकिन है कईयों के दुरूस के अंदर बाकायदा यानी दर्स जारी है तो उनमें
जिन्नात हाजिर होकर मेरी सीखते थे,
वो सीखते हूँ। अच्छा, एक और सवाल है एक खातून की तरफ से कि एक बच्चा वो 2.5 साल का है, एक बच्चा 1.5 साल का है, तो उसके बाद मजीद उम्मीद होने पर घर वाले सब कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कराएं।
देखिए, फ़कत बच्चे छोटे होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो इस काते हमल की जो है वो शरण इजाज़त जो है वो नहीं है। फ़कत जो है वो बच्चा इस वजह से कि जनाब बच्चा जो है वो छोटा है तो हमल ठहरने के बाद भरल उसको साकित करना ये शरण जो है वो जायज़ नहीं है। कोई और सिचुएशन, कोई और मामलात हों, ऑपरेशन के बस अवकात जो है वो मामलात होते हैं, उसमें सिचुएशन और कैफियत वो मालूम करने के बाद उसके ऊपर उलमा रहनुमाई देंगे कि आया उस सूरत में इजाज़त है या नहीं, और वो भी कब इजाज़त है, कितने महीने का हमल हो तो इजाज़त होगी या नहीं होगी। उमूमी जवाब तो इसका यही है, इस कात की इजाज़त नहीं।
हाँ, उसमें भी तो ऐसे ना कोई जान के खतरे हो गए, नहीं जो खातून है उसके साथ ऐसे तिब्बी मामलात हैं और ये खतरात लायक हैं। आमतौर पर जो इस तरह की उम्र कह के बयान किया जाता है ना, तो उसमें जो लोगों का रुझान होता है कि नहीं 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो अब हमने
संभालेगा कौन,
संभालेगा कौन या इसको अब क्या करना है, तो वो फिर घर वाले भी मशवरे दे रहे होते हैं, तो ये शरण बिला उजर ये कहना
है, बिला उजर ही है, इसकी वजह से जो है वो नहीं है। और जान का भी आपने कहा वो हर के अंदर ही जान का ही खतरा घर वाले जो है वो बना रहे हैं।
सही कह रहे हैं आप,
तो वो घर वालों का कहना या खुद अपना फील करना कि नहीं जनाब मुझे जान का खतरा है वो शुमार नहीं किया जाए।
नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुलाहज़ा किया, अपना फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। और हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। दारुल ताले सुन्नत के नंबर्स अगर अपने पास आप सेव रखेंगे तो कई ऐसे सवालात होते हैं जो आपको अर्जेंट भी पूछने हैं और हर रोज़ भी ऐसे दरपेश होते हैं, तो आप चाहते हैं कि दारुल ताले सुन्नत से ही किसी आलम दीन मुफ्ती साहब से बाकायदा आपकी बात हो जाए, तो ये नंबर अपने पास रख लीजिए। दिन के अंदर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये नंबर ऑन होते हैं, इतवार को ऑफ है, और इसके अलावा बकिया तमाम दिनों के अंदर आप इन औकात के अंदर आप ये फ़ोन करके भी अपनी शरी रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें दे और अपने इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। हमारे ओ कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह।